बाजी जो खेले प्यार की बाजी जीत के भी हार जाए खेल है ये दीवानों का बेचारे नादानों का कौन ऐसी राह जाए ना जा ख्यालों में उलझे सवालों में यूं ना दिल लगा
कैसा नशा है ये जो चढ़ता जाए ये बेखुदी का आलम बढ़ता जाए है दिल बता रे ढूंढता है क्या रे थम जा जरा
Be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
Pakistan, मांगे मीठा कोई कहे नमकीन एक बात तो पक्की है ये सब है इसके शौकी राजधानी
स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए
ये है राजधानी
मल्टीपल लोकेशंस इन GTA फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप
सितंबर 14 और 15 CAA सेंट्रल ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम
टिकट फ्री पार्किंग फ्री स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में आमचू मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में कलकत्ता भेलपुरी चटोरी गली में जलेबी तलेगी चटोरी गली में कपल कनर मटका चटोरी गली में
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chatori Gali Food Festival. Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Near pislegi jab jeeb lap lapayegi. Jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame. Sab ke liye kuch na kuch.
ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ ਥੋਡੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸਜਦਾ
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ 100 ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 905-874-7171
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग लेके आ रहे हैं ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप सितंबर 14 ते 15 नु CAA सेंटर ब्रैम्पटन विच ते नाल ही आ रहा ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट जिस विच होणगे लाइव शोज फूड राइड्स एंड मैजिक शो एंट्री एंड पार्किंग बिल्कुल फ्री तो देरी जानकारी लिए 416-560-8583 416-560-8583 और विजिट फैंटास्टिकफॉलफेस्ट.com
अरे आज आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं?
मुझे अपने बेटे की शादी के लिए एक खूबसूरत और मुख्तलिफ बैंक्वेट हॉल की तलाश है।
लो मैं आज आपको बताती हूँ ना सिर्फ मुख्तलिफ और खूबसूरत बल्कि ब्रांड न्यू बैंक्वेट हॉल का। जी हाँ, चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल आपके अपने शहर मिसिसागा में ना सिर्फ शादी ब्याह बल्कि हर किस्म की तकरीब के लिए चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल का ही इंतखाब करें। साजो आवाज का हवाला देने पर स्पेशल डिस्काउंट 9054588888 2935 ब्रू रोड मिसिसागा। आपकी तकरीब को चार चांद लगाए चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल।
मजे मजे के टिक्के मजे के कबाब
खाना हो तो आ जाओ शाहीन शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मजे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का
लाहौरी स्टाइल नाश्ता मजेदार कढ़ाई माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
जी सामिन कराम वेलकम बैक अगेन। 4:06:21 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और साहब जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान कावर नईम हाशमी साहब, इनसे हमारा रابطہ हो चुका है पाकिस्तान से और अब पाकिस्तान के ताज़ा तरीन ख़बरें और तबसरा आप सुनेंगे जनाब कावर नईम हाशमी से और उसके बाद फिर आपने अगर कोई सवालात करने हो तो भाई बाय ऑल मींस यू कैन कॉल अस 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है। बस गुजारिश वही होगी कि आप छोटे से छोटा सवाल रखें ताकि तमाम बहन भाइयों को मौका मिल सके कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद लोग कॉल कर रहे होते हैं और हम उनकी कॉल्स नहीं ले सकते क्योंकि कावर नईम हाशमी साहब जा चुके होते हैं उस वक्त, तो फिर हम आपसे माजरा चाहते हैं। तो कोशिश ही किया करें कि छोटे से छोटा सवाल रखें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। चलिए साहब मैं ले चलता हूँ आपको पाकिस्तान और कावर नईम हाशमी साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सर, कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं माजिद भाई? आप कैसे हैं? अरफा बीबी कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
हम तमाम अरफा बीबी को मेरी तरफ से हज की मुबारकबाद दीजिए।
खैर मुबारक, खैर मुबारक सर इंशाल्लाह।
अभी बहुत उम्मीद है कि हमारे लिए बहुत दुआएं की होंगी उन्होंने
इंशाल्लाह। और ट्यूसडे को इंशाल्लाह फिर आपसे आरफा जी बात करेंगी यहाँ पर इंशाल्लाह। सब खैर खैरियत से रहा तो इंशाल्लाह ताला आरफा से आपकी बातचीत कराएंगे हम ट्यूसडे को। पाकिस्तान की क्या खबर है सर? पाकिस्तान में क्या हो रहा है?
पाकिस्तान में तो वही अपना, मैंने जैसे कि हम पिछले 3-4 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं
जी,
मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बड़ी वैलिड है पाकिस्तान में। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं
जी,
तो मैं अपने जो हमारे सुनने वाले हैं उनको एक बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ
जी
कि पिछले एक साल के बाद जबकि अभी 3 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत का एक साल खत्म हुआ है,
सही,
पाकिस्तान में मईशत की बहाली का अमल जो है वो शुरू होता नजर आ रहा है
माशाल्लाह माशाल्लाह।
और पिछले चार दिन से स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है और 4 दिनों में 3100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है।
वाओ वेरी गुड जी।
ये पाकिस्तान में एक जो हम बहुत खतरे में लोग महसूस कर रहे थे अपने आप को जो एक साल लोगों ने गुजारा है, कुछ लोगों को सुकून मिला है और कुछ तसल्ली हुई है मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, और लगता है कि सरमायाकारों का जो है वो मौजूदा हुकूमत पे एतमाद जो है वो बहाल होना शुरू हुआ है। तो ये एक अच्छी
खुशखबरी है, बहुत खुशखबरी है साहब। 3100 पॉइंट से एक चार दिनों के अंदर मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और यही जो आपने एतमाद की बात की, मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ कि लोगों में अगर दोबारा से कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए कि यस इस हुकूमत पर, तो माशी हालात ऑटोमेटिकली सही होने लगेंगे।
जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने जब मईशत नीचे गिर रही थी तो हम मुसलसल प्रोग्राम किए थे, तो ये हमारा फर्ज था कि आज मईशत जो है वो मुस्बत पहलू की तरफ जा रही है, तो हम लोगों को ये भी बताएं।
जरूर जरूर,
हम शुरू करते हैं जी अपना बुलेटिन जो है वो हसब अल जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद ने आज फिर वजीर आजम इमरान खान से इलाके की कशीदा सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की पामाली है इस मौजू पर मुलाकात की वजीर आजम पाकिस्तान से आर्मी चीफ ने। तो मुलाकात का जो मेहर है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती का इशू है, और आर्मी चीफ ने भारत की जानब से कंट्रोल लाइन पर जो मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उस पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। ये लफ्ज मैं बोल रहा हूँ कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम को कंट्रोल लाइन पर होने वाली भारतीय खिलाफ वर्जियों पर एतमाद में लिया। ये एक मानीखेज फिक्रा है, ये मैंने नहीं बोला। ये जो वजीर आजम हाउस से जो एक प्रेस रिलीज जो जारी हुआ है उसमें ये फिक्रा लिखा गया है, और इस फिक्र से लगता है कि कोई बड़ा फैसला किया गया है। तो इस बड़े फैसले का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि इसके बाद जो सामने आया है वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को, तो जिसमें उनका कहना है कि दो एटमी ताकतें इंडिया और पाकिस्तान आंखों में आंखें डाले खड़े हैं और कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले आमने सामने खड़ी हैं, कुछ भी हो सकता है, और दुनिया को इसकी फिक्र होनी चाहिए।
दुनिया को इसकी फिक्र, मैं इस फिक्र की तरफ जा रहा था कि उन्होंने जो दुनिया को कहा है कि दुनिया को इसकी फिक्र होनी चाहिए, ये नहीं कि बाद में भाग के आए, आप अभी से आप सोच लें।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात है जो आप पिछले दो तीन हफ्तों से कर रहे हैं। दुनिया बाद में जंग, आप ही बार बार ये सवाल करते हैं कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो ये तमाशा देखने वाली दुनिया जो है उसके बाद क्या इसका किरदार होगा। ये आपका पिछले दो दिन पहले प्रोग्राम में भी ये आपका एक सवाल
था। सही सही,
तो पाकिस्तानी वजीर आजम का कहना है कि ये जो इंडिया के साथ अब मुज़ाकरात का कोई डायलॉग का कोई इम्कान ही मौजूद नहीं है और ना ही मुज़ाकरात का अब कोई फायदा है।
सही,
तो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो खदशे का इजहार किया है कि जो कशीदगी है दोनों मुल्कों के दरमियान वो अभी और बढ़ेगी। तो इस तरह अपना जो हुर्रियत की आदत है जेलों में नजर बंद है श्रीनगर में, उसने भी आज काल दी है जेलों से मकबूजा कश्मीर में और श्रीनगर के लोगों को कि वो घरों से बाहर निकला है, आज घरों से बाहर निकला है और कर्फ्यू को तोड़ दे और भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाज करे, ये भी एक बड़ा फैसला है। तो इसके अलावा कश्मीर में जो एक जेनोसाइड वॉच है एक अमरीकी एनजीओ, तो उसने एक कश्मीरियों की नस्ल कुशी से मुतल्लक एक अलर्ट जारी किया है और ये बड़ी तहकीक के बाद इन्होंने रिपोर्ट दी है कि मकबूजा कश्मीर में नस्ल कशी जो है वो कश्मीरियों की नस्ल खत्म कर दी जाए, ये मुहिम शुरू होने वाली है। तो इस तरह अमरीकी कांग्रेस के बहुत सारे अरकान जो है बोलना शुरू हुए हैं और कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सफारती महाज पे अब काफी दुनिया की आंखें खोली हैं और अब سلامتی کونسل کے جو پانچ کلیدی ارکان تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی, جنہوں نے قرارداد کشمیر پر پیش نہیں ہونے دی, اب کم از کم جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شروع ہوئی ہیں ان پر کم از کم انہوں نے نوٹس لینا شروع کیا ہے. تو یہ اس طرح صورتحال ہے.
مگر سر اس خبر کو ذرا دو سیکنڈ کے لیے روک لیں اس کو. تو اب ابھی بھی جو کردار عالمی دنیا کو کرنا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہا ہے. ابھی تو صرف ایک آدھ لوگ ادھر ادھر سے اکیلے میں بات کر لیتے ہیں یہ بات, مگر جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کا رد عمل تو ابھی بھی سامنے نہیں آیا ہے. قاوادی معاشمی صاحب,
جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو رد عمل 5 اگست کا جو ایکٹ ہے اس پر ابھی تک کسی کا رد عمل نہیں آیا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے بعد جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور جو کرفیو مسلسل نافذ ہے, اب تیسرا ہفتے سے شروع ہو گیا ہے, اس پر لوگوں کو جو انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں پر لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے. بھارتی ایکٹ پر ابھی تک کوئی سکھ کا اچھا واقعہ سامنے نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں.
اور اس کے باوجود ایک اور نیوز جو میرے سامنے فلیش کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے آج انڈیا کی حکومت کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ذرائع مواصلات کی بندش اور پرامن مظاہروں کے خلاف کارروائی روکنے کا کہا ہے. کیا فرق پڑ جائے گا اس سے کہ اقوام متحدہ نے اگر کچھ کہا, اقوام متحدہ نے اگر انڈیا کو یہ کہا ہے کہ تم جو ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ذرائع مواصلات کی بندش اور پرامن مظاہروں کے خلاف کارروائی روکنے کو کہا ہے, مذمت تو نہیں کی انہوں نے؟
یہی وہ ادارے ہیں جنہوں نے, یہ وہ ادارے ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جنہوں نے انڈین ایکٹ کو انڈیا کا انٹرنل ایشو قرار دیا ہے. جب آپ نے ایک اتنے بڑے ایکٹ کو, آپ نے 80 لاکھ کشمیریوں کو دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ میں ڈالنے کا جو ایکٹ ہے اور دنیا میں سب سے بڑی جیل بنانے کا ایک جو ایک تاریخی ایک واقعہ ہوا ہے, اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے. اور اب آپ اپنی این جی اوز جو ہیں آپ کے ہزاروں کی, جیسے ابھی ہم نے جینوسائڈ واچ کیا, یہ بھی ایک این جی او ہے. تو اب اس قسم کی مکالمے جو بولنا ہے, یہ میرے خیال میں کوئی چیزیں جو ہے معنی نہیں رکھتی. جو اصل چیز ہے اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. اگر مقبوضہ کشمیر کو دنیا نے ایکٹ جو ہے اس کا کہ جی اکائی میں داخل کر لیا ہے, یہ انڈیا کا حصہ ہے, جس کو وہ اٹوٹ انگ کہہ اس پہ دعویٰ جتایا کرتا تھا, اس نے اس کو اپنا اٹوٹ انگ بنا لیا ہے. جب اس کا اٹوٹ انگ بن گیا ہے اور آپ نے تسلیم کر لی ہے اور اس کے بعد آپ کسی کے گھر میں آپ وائلیشن کی باتیں کریں گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کا بچہ جو ہے اغوا کیا ہے. آپ نے ایک بچے کو اغوا کیا ہے,
صحیح.
اس اغوا پہ کوئی نہیں بول رہا, اور بچے کے اغوا کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں رب اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا, پتہ نہیں بچے کو دودھ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. اس بچے کی بازیابی کے لیے کوئی آواز جو ہے وہ قطعی طور پہ ہمیں سنائی نہیں دی.
مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف رسمی باتیں ہیں, اس پہ یہ رسمی باتیں ہیں اقوام متحدہ, آپ اگری کرتے ہیں یہ رسمی باتیں ہیں؟
جی میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور بلکہ میں تو پچھلے 3 ہفتوں سے آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہم تبصرے میں لا رہے ہیں. آپ نے تو دو ٹوک پہ بات کی تھی ماجد بھائی,
جی 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 جی,
اور اس کے بعد تو کوئی بات کرنے کو رہ نہیں جاتی. یہ سب کچھ جو ہے دکھاوا ہے دنیا کا. دنیا نے بھارت کو خود اجازت دی, اور یہاں تک بھی آپ نے اور ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا, یہ جو ملک 72 سال تک مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ نہیں بنا سکا, 72 سال تک وہ خوفزدہ رہا جس ایکٹ سے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ دوسری بار الیکشن جیتتا ہے اور اس کے 72 جو ہفتے ہیں اس سے بھی پہلے پہلے وہ کشمیر پہ قبضہ کر لیتا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا دنیا سے مکالمہ ہوتا ہے اور امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ میں آپ کا مسئلہ ایشو کرا رہا ہوں, حل کرا رہا ہوں جی. اور اب بھی برطانیہ کا کل میں گیا پڑھ رہا تھا ترجمان کا کہ یہ انٹرنل ایشو ہے
جی,
اور اگر کشمیر کا کوئی ایشو پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کا کشمیر کے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا کوئی ایشو ہے تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ ایشو ہو سکتا ہے, اس میں کسی تیسرے فریق کو ملوث نہ کیا جائے. یہ کل کا بیان ہے حکومت برطانیہ کا
جی,
تو اس کے بعد باقی باتیں تو رہ جاتی ہے نا, ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا.
میں اس بات پہ نا یہاں پر ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں بھی طالبان اور افغانیوں کا جو معاملہ ہے وہ انٹرنل معاملہ ہے, اس پہ ہمیں اور کسی دنیا کے کسی ملک کو دخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے.
بالکل ہاں, پھر اس طرف بھی آئیے, بالکل درست کہہ رہے ہیں, تو ادھر بھی آئیے, ادھر بھی توجہ دیجیے.
تو یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے جی,
آپ نے اپنی فوجیں نکالنی ہے
جی,
آپ نے فوج کشی کی تھی وہاں پہ, اب آپ نے اپنی فوجیں نکالنی ہے, آپ کو خطرہ ہے کہ جو آپ کی فوجیں ہیں ان کی واپسی پہ ان کی کوئی جانی خطرہ نہ ہو, اور اس لیے آپ پاکستان کی مدد بھی چاہ رہے ہیں اور آپ کو وہاں انسانی حقوق بھی نظر آ رہے ہیں اور بڑا پرامن انخلا بھی چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے اپنے فوجی وہاں پر موجود ہیں جن کا انخلا آپ چاہ رہے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں شام کی بھی بات کرتا چلوں کہ سیریا بھی ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ہمیں اس پہ دخل دینی چاہیے.
سیریا تو سیریا کی بات کر رہے ہیں آپ, عراق کی مثال کو سامنے لائیں نا
جی جی,
سلامتی کونسل اور عراق
جی,
اور دیکھیے سلامتی کونسل نے اجازت دی عراق پر حملہ کرنے کی امریکہ کو,
صحیح,
اس کے پاس خطرناک کیمیاوی ہتھیار ہیں, صدام کو جس طرح مار دیا گیا اور بغداد کو اور عراق کو جس طریقے سے ہمیشہ کے لیے تباہ و نشت و نابود کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہی سلامتی کونسل کہہ رہی ہے کہ جی یہ اطلاع غلط تھی کہ عراق کے پاس کیمیاوی یا خطرناک ہتھیار ہیں, ان کے پاس ایسے مولک ہتھیار تھے ہی نہیں. یہ ہے دنیا کے تھانے دار, یہ وہ پانچ ملک ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا تو محکوم ہے, ان کی پانچ ملکوں کی محکوم ہے.
صحیح,
ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کے چلتے ہیں, آپ جب دیکھیں گے جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں زخمی کر دیتے ہیں, جس کے چاہتے ہیں سانس توڑ دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ واقعات تو ایسے ہی ہیں, واقعات تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی ہیں.
اچھی بات, چلیے سب دوسری
اگلی
خبر کی طرف چلتے ہیں.
اگلی خبر ہے جی, وہ نواز شریف کو سزا سنانے والے جو احتساب عدالت کے جج تھے جناب ارشد ملک صاحب, ان کا جو ویڈیو سکینڈل تھا اس کا اب آج ڈراپ سین ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ارشد جو ہے ان کے خلاف اپنا فیصلہ سنانے جا رہی ہے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد ملک کے جو احتساب عدالت کے جج تھے ان کو معطل کر دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیا ہے اور ان کی بات ختم کر دی گئی ہے. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ احتساب عدالت کا کہ جج ہے ارشد ملک, اور اس نے اپنے بیان الفی میں اپنا اعتراف جرم کر لیا ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. تو ان سے سفارش کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے, اور ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آج جج کے خلاف جو ہے وہ, یہ ہم اس کا پس منظر بتاتے چلیں کہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے 6 جولائی کو, 2 مہینے پہلے, یہ 6 جولائی کو ایک پریس کانفرنس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک جس نے نواز شریف کو سزا سنائی اس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی تھی اور میڈیا میں تقسیم کی تھی. اس ویڈیو میں اس جج کو یہ کہتے ہوئے سنایا گیا تھا کہ انہیں نواز شریف کو سزا دینے کے لیے بلیک میل کیا گیا تھا اور مریم نواز نے یہ ویڈیو دکھاتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے باپ کو, چونکہ جج کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا اور میں نے بلیک میل ہو کر نواز شریف کو غلط سزا دی اور اس کی بنیاد پہ میرے باپ کو رہا کیا جائے اور ان کی جو سزا ہے اسے کالا دم قرار دی جائے. تو جب یہ مریم نواز کی طرف سے ویڈیو ریلیز ہوئی تو اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی نوٹس لیا اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس پہ کوئی عملی طور پر کچھ ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے کچھ اس کی سمجھ آتی کہ کچھ کر رہی ہے. تو بہرحال جو ویڈیو کی ریلیز کے بعد اس جج نے کئی تنترے بدلے اور کہا کہ حسین نواز نے اسے 50 کروڑ رشوت کی پیشکش کی تھی, اسے کہا گیا تھا کہ اس کے پورے خاندان کو یو کے یا کینیڈا میں سیٹل کر دیا جائے گا, ان کے بچوں کو کاروبار کرایا جائے گا. جی تو اس طریقے سے کہ جی مجھے یہ لوگ جو ہے نون لیگ والے بلیک میل کر رہے تھے, میرے ان کے پاس میری ایک قابل اعتراض سیکشوئل ویڈیو موجود تھی جس میں کوئی بدکاری کر رہا تھا, تو انہوں نے نون لیگ والوں نے وہ ویڈیو جو حاصل کر لی تھی اور مجھے یہ بلیک میل کر رہے تھے کہ تم ہماری مرضی کے مطابق بیان ہمیں ریکارڈ کراؤ اور کہو کہ تم نے نواز شریف کو فیصلہ خود نہیں دیا, تم سے دلوایا گیا ہے. تو یہ جو ان کا موقف رہا ہے.
تو کیا جج صاحب جو ہیں, جو جج صاحب ہیں وہ ان کی اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا؟
جی ان کے بارے میں یہ جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور اس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک بدنما داغ ہے, یہ عدلیہ کے جو لوگ ہیں یا عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس پر اس نے کلنک کا ٹیکا ہے اور اس نے پوری عدلیہ کو اس جج نے کیا ہے اور یہ خود قصوروار ہے اور یہ خود جو ہے ان کا خیال میں کہ جج جو ہے وہ از خود ذمہ دار ہے اور اس بارے میں جب کل کو فیصلہ آتا ہے اور چیزیں کل سے سامنے آنی شروع ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ جج جو ارشد ملک ہے جو نون لیگ کے ہاتھوں استعمال ہوا, جس کے مریم نواز صاحبہ نے ویڈیو ریلیز کی تھی یہ کہتے ہوئے کہ جی مجھ سے تو زبردستی سزا دلوائی گئی, تو اب اس کے جو پچھلے جو حقائق ہیں محرکات ہیں اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو ایف آئی اے ہے اس نے ابھی تک فرانزک معائنہ تک نہیں ویڈیو کا کروایا کہ ویڈیو کا فرانزک معائنہ کرایا جاتا ہے, کیونکہ یہ ویڈیو الگ بنائی گئی, آڈیو علیحدہ بنائی گئی. حکم ناصر بٹ نامی ایک رشتہ دار نواز شریف کا, اس نے یہ ویڈیو بنائی اور اسی نے اس کو دبئی بھی بلوایا اور اسی نے اس کو عمرے پہ جب یہ جاتے ہیں اکٹھے وہاں بھی ملاقات ہوئی. تو مریم نواز نے ویڈیو تو جاری کر دی, اب یہ ہے کہ جو مطالبہ کیا تھا مریم نواز نے کہ جی اس جج نے ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو غلط یہ دیا ہے, سزا دی ہے, تو اب مریم نواز کیوں غائب ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کل سوال اٹھایا کہ اگر کوئی آدمی ہمیں یہ درخواست دے کہ نواز شریف کی سزا جو ہے وہ ختم کی جائے اور اس کو رہا کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر مثبت فیصلہ آ جائے. اس کے باوجود نون لیگ اور مریم نواز جو ہے وہ سکرین سے غائب ہیں اور اب جو ہے وہ اس ویڈیو سے اظہار لا تعلقی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی درخواست دی تو پھر معاملہ اور بگڑے گا اور پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو بنی کیسے. ویڈیو تو جو بنی ہے وہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ نون لیگ والوں نے بنائی ہے, लेकिन नून लीग ने अगर वीडियो बनाई है तो उसमें उसका अपना किरदार क्या है एहतसाब अदालत के जज अरशद मलक का, ये चीजें जो है ये आसानी के साथ सामने आ जाएंगी अगर इसके लिए ट्रायल किया जाए। अब देखिए मरियम नवाज खामोश है और इजहार ला तल्लुकी किया वीडियो से, जब उनको अदालत ने बुलाया कि भाई ये वीडियो आपके पास कैसे आई, तो उन्होंने कहा पता नहीं कैसे आई, वो मुझे तो एक बंदे ने दी थी। फिर वो शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, उनसे पूछा गया भाई ये वीडियो आप लोगों के पास कहां से आ गई, तो शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि मुझे उस वीडियो का पता ही नहीं, मुझे तो इस वीडियो का उस वक्त पता चला जब ये मरियम नवाज जो है इस वीडियो को वायरल कर रही थी और मीडिया को दे रही थी, उससे दो चार घंटे पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ये वीडियो है। तो अब जो असल बात है वो जो अरशद मलक साहब को मुअत्तल किया गया है और कल इनके खिलाफ कोई फैसला वैसला भी आएगा, तो वो सवाल है अदलिया की साख का।
सही,
तो बाकी चीजें तो आगे चलती रहेंगी, लेकिन ये साबित तो जरूर हो गया है कि अरशद मलक ने अदलिया की साख को मुतासर किया है।
अब सवाल ये पैदा होता है खावद अहम हाशमी साहब के इस सारे सिलसिले की वजह से जनाब नवाज शरीफ का क्या होगा, नवाज शरीफ को क्या मासूम कह के निकाल दिया जाएगा, या ये कि उन पे दोबारा केस होगा, या ये कि वो जो जेल में है वो जेल में ही रहेंगे।
जिस केस का जब शुरू हुआ था तो उस वक्त भी हमने कहा था और बिल्कुल जैसा हमने कहा था तसलसल के साथ हम वहीं खड़े हैं, इस वीडियो का नवाज शरीफ को सुनाई गई सजा से को किसी किस्म का कोई मुतासर नहीं करेगी, क्योंकि इस वीडियो की कैसे बनाई गई, कैसे आवाज को जोड़ा गया, कैसे उसको किया गया, कैसे वाकई उसको ब्लैकमेल किया गया, उसकी जो न्यूड वीडियो थी जज की वो उनको बुनियाद बना के उसको ब्लैकमेल किया गया, तो लेकिन उसमें ये तयशुदा बात है कि वो जो वीडियो है वो नून लीग ने चूंकि खुद मैनेज की ये बात साबित होती है, तो उस बुनियाद पे कि आप मैनेज करके किसी आदमी से कुछ दो फिक्रे बुलवा के ये आप कह दें जी अब नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाए, तो अगर आपने मुतालबा किया था तो अदालत कहती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसको अदालत उज़्मा कहा जाता है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके चीफ जस्टिस ने कहा है कि आओ कोई आदमी आओ हमें दरखास्त दो कि नवाज शरीफ को रिहा कर दिया जाए, नवाज शरीफ की सजा जो है खत्म कर दी जाए, तो इस पर हम गौर करते हैं, हो सकता है कि हम कर दें। इसके बावजूद नून लीग जो है अदालत में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको पता है कि दाल में काला है।
ठीक है कावद अहम हाशमी साहब, इसमें मैं जी कावद अहम हाशमी साहब मैं अब दावत दूंगा लोगों को कि भाई हमारे सामईन जो हैं अगर उनको कोई सवाल करना हो तो 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है, 4166201778 हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कावद अहम हाशमी से अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो उस सवाल का जवाब जनाब कावद अहम हाशमी साहब देंगे। जी आगे की बातें बताएं सर, इससे पहले कि आगे बढ़े एक एक दो कॉल एक दो कॉलर्स भी हैं उस उनको भी ले लेते हैं साथ साथ। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर।
हेलो
जी कौन बात कर रहे हैं?
मैं ऑन एयर हूं।
जी आप ऑन एयर कौन बात कर रहे हैं सर?
मेरा नाम आजम है।
आजम जी फरमाइए।
सर ये जो अरशद मलक है ना, ये जो छोटा सा मासूम सा कुछ चाबी वाला खिलौना नहीं होता, वो था असल चीज तो साकब इंसान से शुरू आपने बताई नहीं है, असल चीज वहां से शुरू होती है कि उसकी क्या प्लानिंग थी, और दुनिया की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक जज के ऊपर जज बिठाया गया मॉनिटरिंग करने के लिए। अरशद मलक तो कुछ भी नहीं है और वीडियो पर जो उसकी बनी है आप कह रहे हैं कि उस पर दबाव था, उसको ब्लैकमेल के, वो कोई फीडर से दूध पीता बच्चा था, एक जज है इतने बड़े आदमी का वो फैसला कर रहा है, इतना बड़ा फैसला कर रहा है वो, तो उसको ब्लैकमेल कौन कर रहा था, वो उसको अपनी जिम्मेदारी का कोई साहस नहीं था, और असल जो जिम्मेदार है वो साकब निसार है, वो मुल्क से फरार हो गया है, एक दिन भी वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रुका, अब कहां वो, उसे पकड़ा जाए, उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि उसने पाकिस्तान से खिलवाड़ क्यों किया, जो फैसले करने थे वो पेंडिंग किए और जो सिर्फ एक जमात के खिलाफ फैसले थे वो रात को 12-12 बजे तक वो सुनाता रहा, उनको सजाए। बात हक की है, सच की हमें करना चाहिए। हम पहले बहुत ज्यादा ना अंधेरों में डूबे हुए हैं एज ए पाकिस्तानी।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। कावदी माशी साहब क्या कहेंगे आप?
आपको 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 इनको इनको गलत हुई। हमने ये हमने हमने जो खबर दी है वो ये खबर दी है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलक ने, जिसने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी, उसने नून लीग के साथ जो एक वीडियो बनवाई, उस वीडियो के हवाले से जो तहकीकात हुई, उन तहकीकात में ये दलील दी है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया। हम नहीं कह रहे कि उसे ब्लैकमेल किया गया, उसने उस वीडियो की दलील दी है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसकी यह दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तस्लीम नहीं की।
ठीक,
ये थोड़ी सी चीजें क्लियर रखा करें, ये खुद कंफ्यूज कर देते हैं चीजों को।
जी, नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम
जी, मैं लाइन पे हूँ।
जी लाइन पे कौन बात करें सर?
जी मैं मोहम्मद अली बेग बोल रहा हूँ।
मोहम्मद अली बेग साहब फरमाइए।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चलो वो उस पर दबाव था तो ये 27 रमजान को हुसैन नवाज, ख्वाजा आसिफ, ये सारी टीम उनको वहाँ उमरे के 27 रमजान को वो आवाम को क्या कह रही थी, मतलब और नवाज शरीफ उनको घर पे बुला के रायविंद पे क्या कह रहे थे, और रखा किसने था इसको जज? इन्होंने तो ट्रांसफर करवाया था केस नवाज शरीफ वालों के, कि हमें बशीर जो है जज जो जिसने पहले सजा दी थी राय उसको नहीं चाहिए, हमें ये जज चाहिए हमें। तो ये खुद ये लेकर आए थे अपने बंदे और ये खुद ब्लैकमेल करते हैं। शहबाज शरीफ की टेप आपको याद नहीं है, मलक खयूम को जो उसने फोन करके कहा था जरदारी को सजा दो, ये करो वो करो, तो ये खुद माफिया है। इनको तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माफिया कह चुका है, ब्लैकमेलर कह चुका है इनको, नून लीग को।
बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। खबर साहब को
हमारे दोस्त जो बोल रहे थे मोहम्मद अली बेग साहब
जी,
मोहम्मद अली बेग साहब आपने जो सवालात उठाए हैं ये सवालात इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उठाए हैं कि अगर तुम इतने मासूम हो तो ये सब कैसे होता रहा। तुम हुसैन नवाज से भी मिलते हो, तुम इनके कहने पे उम्र पे भी चले जाते हो, तुम दुबई भी चले जाते हो, तुम ये भी कर लेते हो, तुम वो भी कर लेते हो, तुम इनके घर में जाकर भी बैठ जाते हो, इनके मेहमान भी घर में जाके बैठ जाते हो, इनके घर में जाकर मुजाकरात भी करते हो, तुम इतने बोले कैसे हो सकते हो? तुम्हें गिल्टी करार दिया जाता है और तुम्हें सजा दी जाती है, इसलिए इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मैंने आपको बार बार बताया है कि इनको मुअत्तल कर दिया गया है। पहली सजा अगली सजाओं का कल पता चलेगा।
नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं सर?
जी मैं मियां कर रहा हूँ, बात ये है। हेलो
जी जी फरमाइए मियां साहब।
बात ये है, ये किस तरह की बातें हो रही हैं और ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? इनको पकड़े और आग में डालें, ये इन्होंने खा गया मुल्क को, चोर डाकू खा गए, ये किस तरह की बातें करते हैं आप? बच्चों वाली लूट के ले गए दुनिया, इनकी आने वाली नस्लें 50 नस्लें भी खाएं तो ये इनके पास पैसा दौलत खत्म नहीं होता। मारो इनको, समुंदर में डालें और पैसा निकालें रात किसी तरीके से,
बहुत, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया मियां साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम
जी, क्या हाल है आपके?
बखैर है। कौन बात कर रहे हैं सर?
तनवीर साहब बात कर रहे हैं जी आपसे, वहीद मुराद।
अच्छा
जन्नत से बात कर रहे हैं जी।
मुराद साहब आपको तो हमने लाहौर के गुलबर्ग में रखा हुआ था, आप कहाँ चले गए?
मैं जन्नत से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ जी।
अच्छी बात, फरमाइए सर फरमाइए।
वो कहने का वजह क्या है, जो 72 साल में नहीं हुआ कश्मीर के बारे में, वो यकायक इतना बड़ा स्टेप इंडिया ने लिया है, क्या इसकी वजह पाकिस्तान का कमजोर होना है? कोई इंटरनेशनल साजिश हुई है या हमारे वो कहते हैं ना जी वो बिल्ली वो क्या चोरों से कोई मिले हुए हैं, वो कुत्ती चोरों से मिल जाती है ना जी, वो भी तो एक मशहूर है ना जी, को हमारे सारे लोग भी कोई मोदी के साथी बन गए।
बहुत शुक्रिया सर। एनी कमेंट सर? कावदी माफी साहब
जी, इसमें इसको हम एक बैन अल-अक़वामी साजिश करार दे सकते हैं। एक बात तो आपकी हम तायीद करते हैं कि ये एक बैन अल-अक़वामी साजिश है और आलमी ताकतें जो है इस साजिश में मुलव्वस है। और नंबर टू का क्या हमारी कमजोरियां हैं, हमें दिल की सच्चाइयों के साथ ये एतराफ़ करना चाहिए कि ये हमारी भी कमजोरियां हैं। हमने 72 साल तक अपने आप को दुनिया से आइसोलेट रखा है, हमारी सफारतकारी जो है वो इंतहाई कमजोर रही है। हम साल हर साल तक हुकूमत दर हुकूमत वजीर खारजा ही नहीं रखते जी, तो वजीर खारजा के बगैर मुल्क को चलाया जाता है। नवाज शरीफ की 4 साल हुकूमत में वजीर खारजा कौन था, अगर किसी को पता हो तो मैं बता दे
क्या नाम है सर।
और जिस तरीके से सफारतकारी होती है और जी चाइना का सिस्टम और है, चाइना का सिस्टम और है, वो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी चलाती है जी, उनके फैसले जो होते हैं वो बाहर वाले उनका सब्र भी नहीं करता, वजीर आजम भी नहीं करता, वो तो चाइना में और रशिया में जो फैसला साजी है वो पार्टियों के हाथ में होती है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है या मैं गलत कह रहा हूँ?
नहीं एकदम सही कहा आपने, हमारे मुल्क में तो कोई वजीर खारजा था ही नहीं सर।
हाँ और जो हमारे जो वज़ीरे आज़म है अगर नवाज शरीफ और इमरान खान और आसफ जरदारी और आसफ जरदारी के वज़ीरे आज़म जो नामजद करता थे, अगर ये 5 आदमियों को हम सामने चिर ले आए तो क्या ये आपको खारजा अमूर के माहरीन लगते हैं? इनका कोई ताल्लुक है अमूर खारजा से? ये पाकिस्तान की भी कमजोरियां हैं, हम इसका इदराक भी रखना चाहिए हमें और एतराफ भी करना चाहिए।
नेक्स्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
कौन बात कर रहे हैं सर?
मैं फैयाज बात कर रहा हूँ
जी। फैयाज
मैं एक बात पूछती थी कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर एक चोर और चोरनी ने एप्लीकेशन दी कि हमें टीवी चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हमारे स्टूपिड जज ने कहा कि आप अपने खर्चे पे तो करना चाहें तो कर लें, हमारे पास पैसा नहीं है। ये कैसी अदालत का फैसला है? चोर और चोरनी, सर्टिफाइड चोर और चोरनी को आप कह रहे हैं कि वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठे हैं, उनके लिए क्या क्या मसला है?
बहुत शुक्रिया सर आपका जी।
ये इंतहाई मजाका खेज फैसला था, ये भी एक एहतसाब अदालत ने फैसला दिया है। ये आसफ अली जरदारी को उन्होंने दरख्वास्त की थी, आसफ अली जरदारी दे के हमशीरा फरियाल तालपुर ने कि उनको जेल में 1 क्लास की सहूलतें जो है वो मुहैया की जाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपने खर्च पे दुनिया की हर आसाइश और कौन कौन सी आसाइश ये हम अपने इसी प्रोग्राम में 2 दिन पहले हम उसकी एक एक डिटेल जो है दे चुके हैं। ये इंतहाई मजाका खेज चीज है कि जिससे साबित होता है कि क्या आइंदा कोई भी पैसा रखने वाला कोई भी जुर्म करके वो जेल जिस जेल में उसको रखा जाएगा उसको पैरस बना के वहां पर रिहाइश रख सकेगा, और क्या इसी चीज को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ की सारी सहूलतें असल नहीं करेगा?
सही।
और क्या ये और भी जो पैसा रखने वाले लोग हैं तो जेलें जो है क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जेलें जो है वो जेलें सिर्फ गरीबों के लिए रह जाएंगी और अमीर लोगों के लिए ये अय्याशी के एक महकदे बन जाएंगे और एक बड़े सैरगाहें और तफरी गाहें बन जाएंगी? हम इसकी मजम्मत करते हैं इस फैसले।
नेक्स्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
कौन बात कर रहे हैं
सर? साहब अयूब बात कर रहा हूँ। मैंने एक सवाल था मेरा ये आपसे कि मुझे ये बताएं कि ये सडनली अमेरिकन सदर ने इमरान खान के साथ बैठे हुए कह दिया कि आई एम गोइंग टू डू मेडिएशन ऑन कश्मीर, तो क्या ये कहीं पे कोई पहले से इमरान बाजवा ने कश्मीर का सौदा नहीं कर दिया था कि जो वहां पे ये बात करके और उसके बाद सडनली ये फैसला भी हो गया कि वो उसको इंडिया में जम कर दें और कोई बोला भी नहीं है उस पर और ये बस आप गोंगलों से मट्टी उतार रहे हैं, तो क्या आप ये समझते नहीं है कि ये जिन दोनों को बुलाई इस वजह से गया था कि ये बहुत बड़ा इशू होने जा रहा था और इन दोनों को एतमाद में लिया गया था? शुक्रिया जी।
इसके जिन चीजों की हमारे पास कोई सबूत ना हो ना तो उन चीजों पे हमें ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, मगर ये इल्जाम होता है, ये हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका इस चीज का हमारा कोई सबूत नहीं है।
बहुत पॉलिटिशियन थे, बड़ी पॉलिटिक्स की है इन्होंने, हमारे साथ जो हमारे कॉलम थे अभी
जी,
ये वही पॉलिटिक्स है जो बिलावल भुट्टो बरदारी ने कौमी असम्बली के पहले इजलास में इमरान खान के साथ की थी कि उसमें इलेक्टेड की बजाय सिलेक्टेड वजीर आजम कहा और इमरान खान को पता नहीं चला और इमरान खान ने तालियां बजानी शुरू कर दी और इन्होंने यही हमारे साथ करने की कोशिश की है और ये लफ्ज इस्तेमाल किया है शुरू में हमारे कलर ने इमरान बाजवा। तो ये इस तरह की मेरा ख्याल है अगर आप डिप्लोमेसी करेंगे तो हम तो डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, बड़े सीधे सीधे जवाब आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं और आपने जो सवाल किया है पिछले कॉलर का भी यही सवाल था और उसका जवाब हम दे चुके हैं।
बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये मैंने इल्जाम नहीं लगाया, आप जूते पॉलिश करते हैं करते रहे।
नेक्स्ट कॉलर जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी सर,
क्या कहा जी उन्होंने?
मैंने इग्नोर कर दिया सर जी। नेक्स्ट कॉलर जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, नासिर खान बात कर रहा था।
जी सर नासिर भाई,
मैं ये सिर्फ कह रहा था कि जो लोगों का मुख्तलिफ लोग अपनी आरा होती हैं उनको कहने दिया जाए, लेकिन जो समझ बूझ वाले लोग होते हैं और एक जिनके पास एक्सपोजर तरफ ज्यादा होता है वो इन चीजों पे नहीं जाते कि इमरान बाजवा है ये, क्योंकि हमें अपनी फौज पे और अपनी हुकूमत खास तौर पे जो है जितने वो स्टेप ले रही है वो सारे मोहब्ब वतन के हैं, यानी कि वो सारी इस मुल्क से और इस आवाम से मोहब्बत वाले हैं, तो हमें इस वक्त बड़े फील सिक्योर करते हैं। जैसे भी आपने भी कहा कि सिक्योरिटी हमारी अच्छी जा रही है, इकोनॉमी अच्छी जा रही है, इसका मकसद हमें पता है कि इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं तमाम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और फौज वो तमाम हमारी तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रही है और हमें उनकी शक पे, उनकी मेहनत पे और उनके फैसलों पे कोई शक नहीं है। जहाँ तक दूसरे लोग अपना सोचते हैं वो सोचने दें, लेकिन बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी के ये नहीं पता होता कि कौन लोग किसकी जबान बोलना चाह रहे हैं आपके रेडियो पे आन के किसका जाके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मतलब ये कि इस वक्त हमारी 22 करोड़ आवाम जो है वो फुली अपनी फौज पे और अपने हुकूमत पे और उसके तमाम लोगों पे कर रहे ट्रस्ट करते हैं और वो वाकई इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह मियां उनको और इस तरह खिदमत करने का मौका दे और जो भी हमें हालात अल्लाह मियां देगा उसमें इंशाल्लाह हम अपने मुसलमानियत के लिहाज से भी और इंसानियत के लिहाज से भी पूरा उतनी कोशिश करेंगे।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी जी। हेलो नेक्स्ट कॉल,
अस्सलाम वालेकुम।
एक मिनट ठहर जाए सर। हाँ, कावदी माशमी साहब कुछ कह रहे थे। हेलो,
इनसे मैं जवाब देना चाह रहा था कि इसीलिए हमने जो आज का हमारा प्रोग्राम है, हमने पाकिस्तान में आज से जो एक पिछले चार दिन से मुआशी इस्तेहकाम शुरू हुआ है, मुआशी इस्तेहकाम शुरू हुआ है उसकी निशानदही करके स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम और पाकिस्तान में एक साल के बाद चार दिन में जो स्टॉक मार्केट का हमने जिक्र किया और ये सरमायाकारी का जिक्र किया उसकी बुनियाद भी यही थी कि मुमकिन है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो ठीक ही कर रही है और जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान जो है मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने लगा है। पाकिस्तान की पॉलिसियां ये खास तौर पर पाकिस्तान की फौज की पॉलिसियां हमें बिला डाउट बिला शक्को शुबा जो कौमें होती है वो अपने फौज के साथ होती है, अपनी हुकूमतों के साथ होती है, इसी तरह हम भी इस पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं हमारी जो पेशा वराना जिम्मेदारियां हैं हम वो जरूर अदा करते हैं, हमारा जो नुकता नजर होता है वो हम जरूर अदा करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होता जिस पे हम तनकीद बराए तनकीद का पहलू निकालते हों। जी
बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी तरह आपने जी। हेलो, सलाम
सलाम। جی وعلیکم السلام.
کون بات کر رہے ہیں سر؟
جی میں واحد بھائی کامران شریف بول رہا ہوں. کیا حال ہے؟
جی کامران بھائی فرمائیے.
سر اشمی صاحب سے ایک کوشچن ہے.
جی جی.
کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنی کوئی بے گناہی کا ثبوت بھی دیا ابھی آج تک کہ نہیں؟ اور اسپیشلی جو ڈیلی میل والا انہوں نے کہا تھا جی سلاب زدگان کے پیسے کھا گئے ہیں شہباز شریف صاحب, یہ لے کے گئے ہیں انہوں نے کوئی پیش رفت کی ہے, کوئی کیس کیا ہے کہ نہیں عدالت پہ کہ بس ایسے ہی پٹواریوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جی؟ اور نمبر دو یہ بتائیں جیسے جج صاحب نواز شریف کے گھر جا کے ملے ہیں حاضر ٹھٹی جج, وہاں پہ نواز شریف صاحب کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ان کو بھی سزا ہوگی اس کیس میں کہ نہیں ہوگی؟ تھینک یو.
بہت شکریہ سر. جی فرمائیے سر.
جی نواز شریف صاحب کو تو چونکہ ڈائریکٹ ملوث نہیں ہے, ان کی صاحبزادی ملوث ہے, اور صاحبزادی جو ہے وہ تیلی لگا کر وہ آگ جلا کر جو ہے وہ آج خود غائب ہو گئی ہیں. اب ان کو میدان میں اس وقت ہونا چاہیے تھا, آج ان کا بیان آنا چاہیے تھا, وہ ان کو رد عمل دینا چاہیے تھا, اور ان کو کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ جج صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے سزا جو ہے وہ دباؤ کی وجہ سے دی ہے, اور آج جب وہ جج جو ہے وہ کٹہرے میں ہے اور اس کو سزا سنائی جانے والی ہے یا اس کے کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے, تو اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جناب آ کر دعویٰ کرے نواز شریف کی بریت کا اور اس کی سزا کے کالعدم ہونے کا, دعویٰ کرنے والا کوئی ہے تو آ جائے, شاید اس کا دعویٰ ہم پورا کر دیں. اس کے باوجود آپ غائب ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ دال میں کالا ہے, کھچڑی جو ہے وہ جو آپ نے پکائی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے آپ نے, اور وہ بہت کچھ بے نقاب ہو جائے گا, اس لیے یہ لوگ خاموشا چپ ہیں.
نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی ہلو السلام علیکم.
جی
ہلو.
ہلو السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں سر؟
جی سہیل بول رہا ہوں.
جی سہیل بھائی فرمائیے.
میں یہ پوچھنا تھا خاور سے, خاور صاحب سے, کہ یہ جو ویڈیو تھی یہ ویڈیو کو ٹیمپر کیا ہے کہ نہیں کیا, اور فرینسک کا کوئی رپورٹ آئی ہے, ود آؤٹ اس کے کیسے ڈیسیجن بنائے گی کورٹ کہ یہ ویڈیو ٹیمپر کی ہے کہ نہیں کی؟ تو ہاؤ کین دے میک اے ڈیسیجن ود آؤٹ ایویڈینس آف پروون کہ بھائی یہ ویڈیو ٹیمپر نہیں کی ہے؟
بہت شکریہ سر. جی خاور دیب ہاشمی صاحب, خاور دیب ہاشمی صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, آپ اگر آپ مجھے ایک تھوڑا تاکہ میں ایک کمرشل چلا لوں اور اس کے فوری بعد پروگرام میں جناب خاور دیب ہاشمی کو دوبارہ سے رابطہ کروں.
ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ, دانت نکلوانے ہیں, لگوانے ہیں, کراؤنز ہیں, بریجز ہیں, ایون اگر امپلانٹس یا بریسز لگوانا چاہتے ہیں تو برامپٹن میں ہینسن اور کوئنز کے انٹرسیکشن پہ, اور اب سگما ڈینٹل کلینک ولیمز پارک وے اینڈ کرائسلر کے انٹرسیکشن پہ. بہترین ڈینٹسٹ تمام انشورنس پلان کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ بنائیے گا, ساز و آواز کا حوالہ دے کے ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے گا. ڈاکٹر مجیب قاضی آپ کے فیملی ڈینٹسٹ, 9054578661.
ایشین فوڈ سینٹر, انڈین, کینیڈین, صاف ستھری گروسری دے نال
کار کار وچ مشہور ہو چکیا ایشین فوڈ سینٹر ہمیشہ سستے ریٹ تے ودیا سیواواں دین لئی وچن بد ہے.
اپنے ایریے وچ پیندے کسے وی سٹور وچ جاؤ گے تے ضرور بچت پاؤ گے.
ودھیری جانکاری لئی ایشین فوڈ سینٹر دا اکو اک نمبر یاد رکھو, 416-740-3262.
ایشین فوڈ سینٹر, 416-740-3262.
ہاں جی سمع کرام, ویلکم بیک ٹو ریڈیو ساز و آواز. جناب خاور دیب ہاشمی صاحب سے دوبارہ رابطہ ہو گیا, ہم بڑے شکر گزار ہیں خاور دیب ہاشمی کے کہ گئے رات گئے تک وہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. جو سہیل بھائی کا آخری سوال تھا خاور دیب ہاشمی صاحب اباؤٹ ٹیمپرنگ, کچھ آپ کے پاس کا علم ہے کچھ؟
جی ہاں, اس آڈیو اور ویڈیو جو کہ اپنا مریم نواز نے جج کی ریلیز کی تھی, تو اس میں ٹیمپرنگ کے حوالے سے ایف آئی اے کو حکم دیا گیا تھا دو ماہ پہلے ہی کہ وہ اس کی فرانزک رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے, لیکن ایف آئی اے مشکوک طور پر اس کی فرانزک رپورٹ آج کی تاریخ تک بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکی. और उसका कहना है कि वो अभी तक उन्होंने फॉरेंसिक इसका ऑडिट नहीं कराया और इस पे अदालत जो है बरहम भी हुई है। और लेकिन ये एक अलग केस है, टेम्परिंग ऑडियो वीडियो अलग केस है। इस वक्त जो एहतसाब अदालत के जज को सजा दी जा रही है या उनको मातूब करार दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, वो उनका बहसियत जज जो मिसकंडक्ट है वो उस पे ये सारा कुछ हो रहा है। ये इनका सवाल बड़ा टेक्निकल था
जी, जी जी
इनका बड़ा
नहीं उनका 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 सवाल बहुत बहुत सही सवाल था, उनका जायज सवाल था कि जज साहब जो है उनको
उसकी पास बता दिए कि जी, जी, दो हिस्से हैं।
जी 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 जी
इसके दो हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा जब ये आएगा तो उसमें मरियम नवाज साहबा जो है वो भी फंसती हैं खुद।
एग्जैक्टली
और FIA इसकी फॉरेंसिक
सही सही है तो अब
पता चलेगा कि नून लीग ने और मरियम नवाज ने गेम क्या डाली है।
एग्जैक्टली
कैसे बनी ये सारा कुछ है जी,
हाँ जी।
और FIA जो है वो उसने अदालत के साथ और अदालत उज़्मा के साथ और अदालत आलिया के साथ तावन नहीं किया, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश नहीं की, लेकिन जज बशीर अहमद जो है वो अदलिया की साख मुतासर करने के इल्जाम में नवाज शरीफ और नून लीग से मुलाकातें करनी और उनके कहने पे एक रिकॉर्डिंग करानी और इतनी बड़ी एक अदालती फैसले को मुतनाज़ बनाना और इन तमाम इल्जामात के तहत वो जो है वो इस वक्त सजा भुगतने वाले।
नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। हाशमी साहब का सवाल ये है,
कौन बात कर रहे हैं सर आप?
जी
कौन बात कर रहे हैं सर आप?
जी मैं खान मोहम्मद बात कर रहा हूँ।
जी खान मोहम्मद साहब।
हाँ जी, तो ये सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि जो ये एहतसाब हो रहा है ये बड़ा फेयर हो रहा है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की दुश्मनी की आपको नजर नहीं आती, या जो अदालतें जो करदार अदा करी इसके पीछे कोई एजेंसीज का प्रेशर नहीं है? क्या ये आज तक पाकिस्तान में जितने भी सियासी जमातों के खिलाफ या लीडरों के खिलाफ फैसले होते रहे हैं अदालतों से आप सबसे इत्तेफाक करते हैं?
बहुत शुक्रिया सर। जी जी
खत्म हुआ जी?
जी 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 जी
जी हम इनसे मुतमइन नहीं है, माजी में भी नहीं थे अब भी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर मैं ये तसव्वुर कर लूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दो जो है बदनवान करप्ट और अवाम दुश्मन ताकतें और जमातें हैं और इनकी क्यादतें भी ऐसी ही हैं, तो क्या पूरे पाकिस्तान में एहतसाब अदालतों के पास इन दो जमातों और इनकी क्यादतों के अलावा बाकी 22 करोड़ अवाम जो है वो इनोसेंट बैठे हुए हैं? और ये जो वडेरा शाही है, अफसर शाही है, सरमायादारी निजाम है, ये जो जहांगीर तरीन जगह जगह फिर रहे हैं और इस टाइप के बेशुमार लोग जो हैं, तो इन सबको आप एक तरफ रख दें और दो सियासी जमातों को आप टारगेट बना दें, इसके बावजूद के ये 100% मुजरम हों, लेकिन लोग अब ये समझने लगे हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत का और एहतसाब अदालतों का टारगेट ये सिर्फ दो जमातें और उनकी क्यादतें हैं और पाकिस्तान में सारे मौलवी हजरात जो है वो मौलाना हजरात जो है और सूफी हजरात जो है वो इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में करप्शन करने वाली तीसरी कोई ताकत किसी को नजर नहीं आती? क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है जी और ये दूसरे और भी बेशुमार लोग जो है वो ये जिसको जरूरत होती है उसको निकाल लिया जाता है? आपके सवाल का हम एहतराम करते हैं, बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन उस सवाल के एहतराम करने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की वकालत कर रहे हैं किसी पार्टी की या किसी लीडर की, लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि लोग ये महसूस करते हैं कि ये दो जमातें और उनकी क्यादतें ही टारगेट क्यों?
उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि दो जमातें और दो क़यादतें जो हैं उन्होंने ही पिछले कई सालों से पाकिस्तान पे रूल किया है।
अब क़यादतों का मतलब सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं होता,
قیادتوں کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ جو آپ نے 50 آدمی وزیر بنا کے اپنے ساتھ رکھے ہیں وہ ان قیادتوں کے وزرا تھے. کیا وہ ان دو جماعتوں کے جب وزیر تھے تو وہ سارا کچھ ان کا درست تھا؟
نہیں تو مگر کہیں سے تو شروعات کرنی ہے نا. آپ نے ایک وقت میں اگر آپ 100 جگہ ہاتھ مار دیں گے تو ہماری تو جو عدالتیں ہیں ویسے ہی بہت پیچھے ہیں, وہ سارے کیسز اتنے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر,